सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः जम्जस्य जम्निलेसे येन विहानेन जम्मि कालं मे नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्य तं मिलेते तेन विहानेन तं निकालं मे कोशकपरिवारेदुम् इन्दो वा सहजिनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवानि सौवपश्चाये सोऽसद्दिष्टि सुत्तो जो संकदिशोः कोदिष्टि। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन पुस्तक के आधार से जैन दर्शन का जो एक महान सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वज्ञता तो जैन दर्शन का मूल है, क्योंकि वो तो नींव है ना, उसी के आधार, क्योंकि ये सारा जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, आगम जो पढ़ रहे हैं, वो बताया सर्वज्ञ ने है। जब जब शास्त्र वाचन करते हैं कोई भी, तो उसे शुरू में कहने की पद्धति या ग्रंथ में शुरू में ही लिखते हैं कि अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव है। तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, यानी उसके उत्तर कर्ता, यानी उसके पश्चात सर्वज्ञ ने जो दिव्य ध्वनि में जो बात बताई, यानी दिव्य ध्वनि में जो वस्तु का स्वरूप आया, उसको गणधर देव ने जानकर 12 अंगों की रचना की। इसलिए मूल कर्ता तो सर्वज्ञ देव है और उसके उपरांत उसके पश्चात गणधर देव है और उनके उपदेशानुसार अनेक आचार्यों ने इसकी ग्रंथों की रचना की। तो अनेक आचार्यों ने रचना करते 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 अब यह ग्रंथ हमारे पास आया है। तो हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं समझना किसी एक व्यक्ति ने उसको लिखा है, जो मूल जो धारा चल रही है उपदेश की वो सर्वज्ञ भगवान से आई हुई है। इसलिए हम भी यहाँ महावीर भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर महावीर थे और उनके द्वारा अभी उनका शासन चल रहा है, उसको शासन कहते हैं। पार्श्वनाथ के बाद महावीर हुए तब तक का इन बिटवीन पीरियड है, उसको कहते हैं पार्श्वनाथ का शासन काल। अब महावीर के पश्चात ये जो हमारा अभी चल रहा है वो महावीर भगवान का शासन काल है। उनके द्वारा जो उपदेश दिया है वो अभी हम आज तक भी उसको पढ़ रहे हैं, उसको हमने पाया है। यानी हम इतने भाग्यवान हैं कि अभी महावीर भगवान नहीं है, 2500 वर्ष हो गए उनको, फिर भी उनका उपदेश जो का त्यों ने वो उसमें तो बहुत सारा लोप हो गया। पहले तो 12 अंगों की रचना की थी, अंगों के सारे अंगों के जैसे श्रुति के लिए कहते हैं पूरा श्रुत जानने वाले भी आचार्य थे। उसके पश्चात वो ज्ञान की हीनता हो गई और वो कुछ अंश रह गया। अब ये अंश का भी बहुत छोटा अंश रह गया है, फिर भी इतना काफी है कि हम सम्यक दर्शन पा सके। ये जो मूल प्रयोजनभूत बातें हैं वो अभी भी हमारे पास है, उसकी देशना भी हमें मिल रही है और मिल गई है, और उसके कारण हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग पर अग्रेसर होते हैं। हमारा पेज नंबर 60 चल रहा था, हिंदी में 60 पुरानी एडिशन में, गुजराती में 56 है क्या, 56। कल बात आई थी एकांत और अनेकांत की, दीपाली कल नहीं थी आप, तो थोड़ा बता दूं। सर्वथा यानी मिथ्या एकांत जिसको कहते हैं, जिसे हम द्रव्य कैसे कहते कि नित्य भी है अनित्य भी लगाते हैं। अपेक्षा से कहना है तो द्रव्य गुणों की अपेक्षा से नित्य ही है, फिर ही लगा सकते हैं, और पर्याय की अपेक्षा द्रव्य ही अनित्य है। द्रव्य कोई अकेले पर्याय को अनित्य नहीं कहा, द्रव्य पर्याय की अपेक्षा पर्याय की तरफ से द्रव्य को देखो तो द्रव्य ही अनित्य है। अपेक्षा लगाई ना, तो अपेक्षा लगाने पर हम ही लगा सकते हैं। परंतु जैसे बौद्धों का मत कैसा है कि द्रव्य अनित्य ही है, बिना अपेक्षा के ही लगा देते हैं, तो द्रव्य को सर्वथा अनित्य मानते हैं, तो वो हो गया मिथ्या एकांत, उसको मिथ्या एकांत कहते हैं। जब अपेक्षा लगाने के बाद हमने ही लगाया, वो हो गया सम्यक एकांत। सम्यक एकांत कहो या नय का कथन कहो, एक ही बात है, क्योंकि नय क्या करता है कि अपेक्षा बताकर उसको ऐसा ही है ऐसा कह सकता है अपेक्षा के साथ। बिना अपेक्षा के होगा तो वो हो गया मिथ्या। तो अपेक्षा को ही कहते स्यात् या कथनचित, और स्यात् सहित जो कथन होता है, जो वाद होता है, वाद यानी कथन होता है, वो होता है स्यादवाद। स्यादवाद ये वस्तु का यानी वो जैन ये जो अनेकांत है, अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है, अनेक अंत यानी वस्तु में अनेक धर्म है, और उसका कथन करने वाला जो कथन पद्धति है उसको कहते हैं स्यादवाद। तो स्यादवाद हुई कथन पद्धति, और अनेकांत हुआ वस्तु का स्वरूप, क्योंकि वस्तु में अनेक धर्म है और उनको बताने वाला जो कथन पद्धति है उसको कहते हैं स्यादवाद। अब उसमें एक एक धर्म को जानने वाला उसको कहते हैं नय, और सभी धर्मों को एक साथ जानने वाला उसको कहते हैं प्रमाण, जिसको कहते हैं श्रुत ज्ञान। क्योंकि श्रुत ज्ञान कैसे कि एक एक धर्म को एट ए टाइम भिन्न भिन्न अपेक्षा से वस्तु को अलग अलग एंगल से जानता है, वो एक एक एंगल को जानने वाला जो ज्ञान है उसको कहते हैं नय। परंतु वो भी हमने देखा था ना, वो अपने कथवा सूत्र में पढ़ा था अर्पिता नियपच सिद्धे, यानी जब एक नय की अपेक्षा हम बात करते हैं, वस्तु गुणों की अपेक्षा नित्य कहते हैं, तब ये अनित्य वाला पक्ष हम रखते हैं, उसको उड़ा नहीं देते, उसको कहते हैं सापेक्ष। यानी अनित्य पक्ष को भी स्वीकार करते हुए हम नित्य पक्ष के द्वारा वस्तु का कथन कर रहे हैं या वस्तु को देख रहे हैं, परंतु उसका अनित्य पक्ष वहाँ है, उसका स्वीकार है, उसको कहते हैं सापेक्ष। तो सापेक्ष जो नए होते हैं वो सम्यक यानी सच्चे होते हैं। निरपेक्ष यानी सर्वथा बताते ना, वस्तु सर्वथा अनित्य है, तो क्या कहना चाहते हैं कि वस्तु में अनित्य अंश ही नहीं है, ये होगा मिथ्या एकांत। तो कल बात हुई थी कि हाँ वस्तु नित्य है, अगर जैनी बोलते हैं तो उनका वो नए का कथन है, अगर कथन चित, क्योंकि जैनियों के कथन में स्यात् पद लगा हो या न हो, क्योंकि वो जैनियों का कथन है तो उसमें वो अपेक्षा सहित ही कथन होता है। हाँ, ये उनको जो मालूम नहीं है तो उनका कथन वो मिथ्या होगा। हाँ, ये तो नए तो सम्यक दृष्टि को होते हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान जो है उसके अंश को नए कहते हैं। अंश यानी वो ज्ञान का टुकड़ा नहीं हुआ, परंतु वो ज्ञान वस्तु के अंश को यानी पूरी वस्तु को एक अंश रूप में देख रहा है। तो जो जो ज्ञान सभी अंशों को एक साथ देखेगा उसको हम कहेंगे प्रमाण ज्ञान, और एक एक अंश रूप वस्तु को देखने वाले ज्ञान को कहेंगे नए ज्ञान। तो प्रमाण में जो नयों से जो वस्तु हमने अलग अलग नयों के, तो वस्तु में अनंत गुण है तो अनंत नय भी पढ़ेंगे, तो प्रमाण ज्ञान यानी ये सारे ही अनंत जो वस्तु के धर्म है उसको एक साथ जानने वाला ज्ञान उसको कहते हैं नए ज्ञान। ये प्रमाण ज्ञान नहीं, प्रमाण ज्ञान। अभी हम नित्य और अनित्य दो की बात करेंगे, वो अनंत की बात नहीं। सम्यक दृष्टि का प्रमाण ज्ञान पांचों ही ज्ञान प्रमाण है, मतिशुता अवधि हाँ अंश रूप से नहीं जानता, पूरी वस्तु को जानता है। अभी सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, ये सम्यक ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण है, वो प्रमाण है। तो ये प्रमाण ज्ञान में उसने अपने शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा का अर्थ ऐसा नहीं वो सिद्ध वाला शुद्ध आत्मा, कल जो बात की थी ना, जो सामान्य अंश है त्रिकाली है उसको भी शुद्ध कहते हैं, पर्याय को गौण करके त्रिकाली एक रूप ऐसा जो सामान्य जो अंश है उसको ग्रहण करना उसको शुद्ध कहते हैं, और सामान्य की अपेक्षा विशेष को अशुद्ध कहते हैं, क्योंकि शुद्ध उपयोग शुद्ध का उपयोग शुद्ध का उपयोग शुद्ध है कहाँ उपयोग करने के लिए, तो ये जो सामान्य अंश है जिसमें हमने पर्याय को गौण कर दिया है, ये पंचाध्याय में बात आई है। वो जो त्रिकाल जिसको ज्ञायक भाव कहते हैं, जैसे उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, वो त्रिकाल ऐसा कि ऐसा रहने वाला है। जीव है वो कभी पुद्गल नहीं होगा, जीव है अन्य जीव रूप नहीं होगा, यानी वो तो द्रव्य की शुद्धता है। एक द्रव्य जो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है वही तो उसकी शुद्धता है, और जो हमारा त्रिकालीय अखंड स्वरूप है वो तो कायम वैसा का वैसा होने रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो उसी को शुद्धता कहा। उसका लक्ष्य करने से वो फिर पर्याय में जो शुद्धता प्रकट होगी, फिर भी उस शुद्ध की अपेक्षा वो पर्याय को भी अलग गिनाया है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी यहाँ तो एकांत और अनेकांत की चर्चा हमारी चल रही है, तो एकांत अनेकांत में ये हमारा कल हुआ था विषय कि कोई जैनियों को पूछेंगे कि क्या तुम सर्वथा अनेकांतवादी हो, सर्वथा लगे ना कि बाकी तो एकांत है, चलो हमने मान लिया, तो क्या आपका अनेकांत भी सर्वथा है? तो अगर हाँ कहते हैं तो वो कहेगा हाँ देखो आप भी मिथ्या भी हो गए, क्योंकि आपने सर्वथा लगा दिया, आपका भी अनेकांत एकांत वाला हो गया। तो कहते हैं जैनी कि नहीं, हम सर्वथा अनेकांतवादी नहीं है, हमारा अनेकांत भी अनेकांत है, यानी उसमें सम्यक एकांत और अनेकांत दोनों ही गर्भित है, उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो ये तो हमारा कल का विषय आपको समझा है। देखो 65 पेज पर ये आज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ है, जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है, कौन सा? सम्यक और मिथ्या। और अनेकांत भी दो प्रकार का है, यथा यथा नहीं इस प्रकार, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। अभी बताए ना, जो सापेक्ष से जो नए का कथन होता है वो सम्यक एकांत हुआ, और मिथ्या एकांत ने बिल्कुल ऐसा ही है बस दूसरा पक्ष ही नहीं है द्रव्य में, ऐसा जो कहते हैं वो मिथ्या एकांत हुआ। और अनेकांत भी दो प्रकार का है, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। निरपेक्ष नए, निरपेक्ष यानी दूसरी अपेक्षा से रहित, यानी जो सर्वथा कहते हो निरपेक्ष नए, वैसे तो वो नए है ही नहीं है, परंतु वो एक एंगल से पूरी वस्तु को सर्वथा बता देते, उसको कहते हैं निरपेक्ष नए, तो नया भास कहते हैं उसको, तो निरपेक्ष नए मिथ्या एकांत है, और सापेक्ष नए सम्यक एकांत है। सम्यक ज्ञान के वो अंश है नए, और ये सापेक्ष है यानी सत्य है, तुलनात्मक ने सापेक्ष ने उसका प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हुए एक एंगल से बात करें, प्रतिपक्ष को गौण करके, तो सापेक्ष ने सम्यक एकांत है, तथा सापेक्ष नयों का समूह अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत है, यानी जो श्रुत ज्ञान प्रमाण जो है, क्योंकि नए किसके अंश है? श्रुत ज्ञान के अंश है। हाँ, सम्यक श्रुत ज्ञान, अकेला श्रुत ज्ञान नहीं, और ये जो नए है ना वो मति ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, और मति इसमें मन परे में नहीं नए होते, वो तो पूरा का पूरा ज्ञान है, उसमें अंश सहित नहीं देखता है। मति ज्ञान में भी नए नहीं होते, देखो नए है जो है वो श्रुत ज्ञान के अंश है। मति ज्ञान ने क्या जाना? आवाज जानी कर्णेन्द्रिय द्वारा, या अभी शास्त्र में पढ़ा आपने, परंतु उसमें इस एंगल से ऐसा है, उस एंगल से ऐसा है, ये जो भेद करके, ये मुख्य गौण करके जो जानने की, नए में क्या होता है? मुख्य और गौण का होती है। मति ज्ञान में तो पूरा का पूरा जान लिया, उसमें मुख्य गौण करके नहीं जानते। ये जो मुख्य और गौण करके जानने की जो कला है वो श्रुत ज्ञान की है, विषय नहीं है, प्रमाण ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के विषय को विषय कहते हैं, ज्ञान स्वयं ज्ञान है, वो जिसको जानता है उसको विषय कहते हैं। हाँ, प्रमाण ज्ञान है वो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश नए होते हैं। अभी जिसका श्रुत ज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान है, और वो मिथ्या ज्ञान के कारण ये जो अन्य मति की जो कुशास्त्र की रचना है उनके जो सारे मत है, कैसे कि बौद्ध क्या कहेंगे कि ये सारे द्रव्य क्षणिक है, तो सर्वथा द्रव्य को ही क्षणिक माना उन्होंने, सर्वथा माना, पर्याय की अपेक्षा क्षणिक कहते तो ठीक था, वो तो सम्यक हो जाता, परंतु द्रव्य क्षणिक है, पहले द्रव्य था वो पूरा ही नष्ट हो गया, अब नया ही कोई द्रव्य है, वो भी क्षण भर में नष्ट होगा। यानी वो नए बिना किसी चीज से द्रव्य उत्पन्न काहे से हुआ, तो इसके लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वैसे बहुत सारे उनमें घोटाले गड़बड़ है सारे, ध्यान में है ना। मिथ्या नहीं क्यों कहा फिर, वो एकांत पक्ष से ही वस्तु का कथन करते हैं, इसलिए वो मिथ्या नहीं। एक्चुअली वो नए है ही नहीं है, नया भास है, परंतु ये सम्यक नहीं के अगेंस्ट हम उसको मिथ्या नहीं कह रहे। मिथ्या नए कहो या नया भास कहो, एक ही बात है। क्योंकि हमें कथन तो नए जैसा लगता है कि हम भी शुद्ध निश्चय नए से कैसे कहते हैं आत्मा ज्ञाता है दृष्टा है किसी का कर्ता नहीं ऐसा, और वो तो सर्वथा ऐसा ही कह देते हैं, यानी पर्याय की बात ही नहीं करते। तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा अकर्ता है तो अभी दुखी क्यों हो? पर्याय में दुख है, पर्याय में मिथ्यात्व है, पर्याय में राग द्वेष है, उसकी चर्चा ही नहीं करते, उस पर्याय को मानते ही नहीं। ये वैदिक मान्यता है वेदांत, या जो वैष्णव में भी वो मनन क्लास वगैरह चलता है ना, वो हमारे पास आती थी एक बार, उन्होंने हमारा पुस्तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो देखा तो उसने सारे ऐसे ईश्वर की कर्तृत्व तो बुद्धि और आत्मा ऐसा ज्ञाता दृष्टा मुकम मुकम, जैसे पढ़ने वालों को क्या लगे कि ये पूरा रे हम भी ऐसे ही कहते, परंतु वो सर्वथा वैसे ही मानते, पर्याय को मानते ही नहीं। ये हो गया मिथ्या एकांत। तो हमने दो देखे, एकांत भी दो प्रकार, मिथ्या एकांत और सम्यक एकांत। अनेकांत भी दो प्रकार का, मिथ्या अनेकांत और सम्यक अनेकांत। जो मिथ्या अनेक मत है ना, जैसे वैदिक कहते हैं सर्वथा नित्य है, बौद्ध कहते हैं सर्वथा अनित्य है, और कौन कौन ऐसे सर्वथा वाले हैं, सारे सारे का समूह मिलकर होगा मिथ्या अनेकांत। अनेक झूठ मिलकर बड़ा झूठ होगा, सत्य तो नहीं होगा। और ये सम्यक जो नए हैं उनका समूह जो होगा उसको कहेंगे हम सम्यक अनेकांत कहो, या उसी को प्रमाण ज्ञान कहो, एक ही बात, उसको श्रुत ज्ञान प्रमाण भी कहते हैं। ख्याल है, सारे ही सम्यक नए। कोई कोई कहते ना, मैंने कल बताया था कि इस धर्म की मान्यता यह है, उसकी ऐसा है, उसकी ऐसी है, उसकी ऐसी, और हम जैनी कैसे है तो सारों जैसा, सारों का मिला हुआ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे झूठ है और सब झूठ मिलकर एक सत्य नहीं हो सकता। तो जैनियों का कथन कहता है कि अपेक्षा बताओ और फिर उसकी कथन करो, तो हो गया सम्यक। कि गुणों की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, ये नित्य और अनित्य मिलकर वस्तु के धर्म है दोनों, और ऐसे दोनों ही धर्मात्मक वस्तु है, ये दोनों को ही जो जानेंगे वो पूरा ज्ञान हुआ ना, वो प्रमाण ज्ञान कहलाते। वो नए वाला भी ज्ञान है पूरी पर्याय, परंतु किसी एक एंगल से वस्तु को देख रही है। नहीं, एट द टाइम वो एक ही एंगल से देख रहा है, वो जरूरत नहीं कि उसको मुख्यता कर ली ना उसने, तो दूसरे अंश को मुख्य करने की उसको जरूरत नहीं भी पड़ेगी। दोनों ही एंगल से वो जानता तो है, नए से अगर पूरी वस्तु को जानना है तो क्रम पड़ेगा, परंतु जितने नए पड़ेंगे उतना फिर अनंत नए पड़ सकते हैं। तो प्रमाण ज्ञान में सारे ही नयों का समूह है, यानी वो प्रमाण ज्ञान जो है, जब आत्मा को जान लिया वो प्रमाण ज्ञान है, नहीं क्रम नहीं है। हाँ, नहीं देखो, क्रमबद्ध पर्याय यानी पर्यायों का पूरा अनादि अनंत क्रम है, वो एट ए टाइम किसने जाना? केवली ने एट ए टाइम जाना, वो नए से नहीं जाना है। और क्रमबद्ध पर्याय ये नए का विषय नहीं है, ये प्रमाण का विषय है। क्योंकि श्रुत ज्ञान में हमने क्रमबद्ध पर्याय ये सिद्धांत है उसका निर्णय किया है, और वो क्रम क्रम से पर्यायों को जानकर नहीं किया। प्रमाण ज्ञान में ये निर्णय हुआ कि आत्म स्वभाव को पकड़ा, आत्म स्वभाव को इन्हें पर्याय को गौण करके पूरा आत्म स्वभाव लिया ना, एक एक पर्याय को गौण किया, पर्यायों का पूरा ही समूह वहाँ शामिल कर दिया है, नित्य लिया ना पूरा प्रवाह। क्रमबद्ध पर्याय में अनादि अनंत वो हमने देखी ना, तीन काल के जितने समय है उतनी पर्याय द्रव्य के एक एक में खचित है। ये हमने पेंसिल का उदाहरण दिया हल्दिया का कि समझो यहाँ से यहाँ तक ये सारी पर्याय है, तो वो काल की अपेक्षा काल के एक एक समय पर ये सारी ही पर्याय निश्चित रूप से खचित है। तो ऐसा हम अगर देखेंगे द्रव्य को ऊर्ध्व रूप से, तो ये द्रव्य खड़ा है अपने सारी पर्यायों के साथ, तो उसका हमने श्रुति ज्ञान में हम तो कल्पना में भी ले सकते हैं, इसको सब कल्पना कहते हैं। बाकी इमेजिनेशन करते हैं हम, ये झूठे झूठे इमेजिनेशन करते हैं, परंतु जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हम इमेजिनेशन में ले रहे हैं अभी। और सर्वज्ञ ने तो प्रत्यक्ष जाना है, हमने तो जो सर्वज्ञ ने जानकर आगम ने बताया, आगम को भी प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण के अलग अलग भेद है, यानी ज्ञान तो प्रमाण है ही, ये आगम भी प्रमाण है। आगम ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। कौन सा इंडिविजुअल सुत है ने क्या? ये तो श्रुत प्रमाण यानी आगम प्रमाण नहीं है। यहाँ सर श्रुत प्रमाण यानी श्रुत ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान है। हाँ ये सर्व श्रुत ने पूरा आगम ऐसा नहीं हुआ लेना, आगम की बात नहीं है, ये भाव श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। आत्मा को जानने वाला जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। जिसने आत्मज्ञान कर लिया उसके बाद वो पदार्थ को भी जान रहा है अन्य, वो भी उसका प्रमाण ज्ञान है, क्योंकि वो पदार्थ को सच्ची तरह से जान रहे हैं। अभी ये पेंसिल जानता है, पहले भी जानता था, तो अभी क्या उसने फर्क पड़ा? पहले भी जान रहा था, मिथ्या अवस्था में भी इसको पेंसिल जान रहा था और अभी इसको पेंसिल जान रहा है, परंतु उसमें जो कारण विपरीतता थी, भेदाभेद विपरीतता थी, स्वरूप विपरीतता थी, इसको एक वस्तु तरीके जानता था। अब ये जानता है अनेक पुद्गलों की मिली हुई स्पंद नाम की पर्याय है और उसकी जो जो अवस्था हो रही है उसके उसके कारण हो रही है, उसमें भी वो निमित्त उपादान जिसका जैसा का वैसा वो जानता है, इसलिए उसका ज्ञान सच्चा है। नहीं तो सम्यक दृष्टि ने तो आत्मा को जाना, तो आत्मा को जाना तो पेंसिल को तो यथार्थ ही जान रहा था पहले से, ऐसा कोई कह सकता है ना? तो वो जब तक वो आत्मा को नहीं जानता तब पर को जानने वाला भी ज्ञान उसका मिथ्या है। आत्मा को जान लिया वो ज्ञान सम्यक हो गया, तो अब वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। पहले भी इतिहास भूगोल को जानता था, अब भी जान रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु तो अभी वो उसका ज्ञान भी वो सम्यक कहलाएगा। पहले सारा का सारा उसका ज्ञान मिथ्या कहलाता था। आत्मज्ञान होने के पहले उसका श्रुत ज्ञान संबंधी जो श्रुत ज्ञान तो आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है, परंतु अभी उसने सही निर्णय नहीं हुआ ना उसका, वो सही निर्णय नहीं हुआ तब तक उसके ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहेंगे। वो जो कहता है या बोलता है वो झूठा नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र की बातें कह रहा है। ऐसा नहीं कहना कि फिर वो मिथ्या दृष्टि है तो उसका सुनना कि नहीं सुनना, वो अपनी बात नहीं सुना रहा है, वो आचार्यों की बात सुना रहा है। तो आत्मज्ञान होने पर उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और ये जो नए जो है वो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। ये मुख्य और गौण करने की जो ज्ञान में ही जो कला है उस ज्ञान को हम श्रुत ज्ञान कहते हैं। हाँ अकेले श्रुत ज्ञान की है, अकेले श्रुत ज्ञान में ये है, और मति ज्ञान है वो तो जानता है, बस जानना इतना ही, उसमें मुख्य गौण करने की मति ज्ञान की नहीं है। मुख्य गौण करके जानने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान भी ज्ञान तो जानता है, उसमें मुख्य गौण से नहीं जानता। मनोपर्य ज्ञान भी ज्ञान करता है, उसका विषय अलग अलग है, परंतु ये श्रुत ज्ञान है वो मुख्य और गौण करके जानता है, इसीलिए श्रुत ज्ञान में ये सारा हो जाता है। आत्मा का अनुभव जो है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो कला है वो सारे श्रुत ज्ञान में हो जाती है, वैसे मतिष्ठ तो दोनों में ही हो जाता है, परंतु यहाँ क्योंकि वो हम शास्त्र के द्वारा हमने आत्मा को जाना, आत्मा को कैसे जाना कि आत्मा का सारा ही स्वरूप जाना, उसका सामान्य अंश भी जाना, उसका विशेष अंश भी जाना है न, अभी तो उस संबंधी हमने सुना, वैसा निर्णय करेंगे, निर्णय करेंगे तो हम अपने विचार से उस पर विचार करते जाएंगे, ये तो शुरू में तो विकल्पात्मक ज्ञान में ही ये सारा होगा। निर्णय जो है, इस निर्णय करना है कि वस्तु कैसी है, तो वस्तु का एक त्रिकालीय अंश है और एक पलटने वाला अंश है जिसको पर्याय कहते हैं। हाँ, शुद्ध ज्ञान में होते हैं। नए का मीनिंग है वस्तु के एक अंश में पूरी वस्तु को हम जानते हैं, पूरी एक वस्तु जो है ना वो किस रूप देखे, तो हमने पूरी ही वस्तु को नित्य कहा, परंतु अपेक्षा लगाकर नित्य कहा कि गुणों की अपेक्षा से वस्तु नित्य है, अपेक्षा लगाई ना, तो पूरी ही वस्तु हमने नित्य स्वरूप से देखी, उसका अनित्य अंश गौण करके वहीं पर रखा, वस्तु नहीं है, वस्तु के बाहर तो गया नहीं है। अब ये जो बंगड़ी है, सोने की बंगड़ी, हमने दोनों अंश को एक साथ देखा, पूरी वस्तु को देखा, कैसा, सोने की बंगड़ी, ये हुआ प्रमाण। अब इसको सोना रूप से देखो, ये क्या है, सोना है, बंगड़ी कहाँ गई, बंगड़ी है ना, पर हम किसको देख रहे हैं, मुख्य किया, सोने को मुख्य किया, तो ये सोना है कहेंगे, हम कहते हैं कितना ग्राम सोना है, तो हमने मुख्य किया है सोने को। अब सोने को तो ठीक है, हमने कितना ग्राम सोना लाया, इतना इतना लाया, तो अभी देखो तो क्या लाया, तो बंगड़ी लाई, तो बंगड़ी ऐसा करके हमने इसको देखा, कितना डिजाइन है, क्या है, अरे अच्छा लगता है, ये इसका हार बना है, तो उसका डिजाइन कैसा है, तो हमने मुख्य किसको किया, डिजाइन को किया मुख्य, तो सोने को गौण कर दिया, और सोने की बंगड़ी कहने में दोनों समान रूप से देखा, तो हो गया वो प्रमाण। अकेले सोना एक अंश मुख्य किया, वो हो गया एक नए, अकेले बंगड़ी को मुख्य किया, वो हो गया दूसरा नए, एक ही एंगल से पूरी वस्तु देखी बंगड़ी। जब बंगड़ी कहा तो सोना कहीं गया नहीं, वही तो है, पर हमारी दृष्टि बदल गई, पूरी वस्तु ही है वहाँ। वैसे आत्मा को देखते हैं तो पूरा आत्मा उदाहरण वहाँ विद्यमान है, या तो सामान्य अंश से देखो या उसको पर्याय रूप से देखो, तो अनादि से हमारी पर्याय बुद्धि है, अनादि से हम पर्याय में ही मशगूल है, पर्याय को ही उलटना पिलटना फेरना या लाना, इसमें हम उलझे हुए, वो भी द्रव्य के पर्याय तो हम जानते ही नहीं है, पर्याय यानी वो जो शरीर है इसी को मैं मानकर, ये जो मनुष्य पर्याय जो है असमान जाति पर्याय है, उसी में एकत्व बुद्धि है, वही तो अनादि की मिथ्यात्व है। अब जब शास्त्र से समझ में आया हमारे ये ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा के ऐसे की पर्याय मिथ्यात्व, फिर उस पर्याय की तरफ ही दृष्टि है कि हमारे मिथ्यात्व कैसे टले और सम्यक को कैसे आए, अभी भी उस पर्याय की ओर दृष्टि है। अब कहाँ देखना है, वस्तु में या अंश है, वस्तु के सारे ही अंशों का ज्ञान हम शास्त्र के आधार से कर रहे हैं, हमें अन्य वस्तु से प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अपनी वस्तु है ना उसका ही हमें अभ्यास करना है, उसी को जानना है, तो हम अपनी वस्तु को जानना है, तो पर्याय हमने उसकी जाने की, उसमें इतने अनंत गुण है, उसकी ऐसी ऐसी पर्याय होती है, परंतु उसको उसका भेद करके तो उसका स्वरूप जाना, अभी उसका अनुभव कैसे करे, तो अकेले भेद को जानते रहने से तो अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये एक वस्तु का स्वरूप हम देख रहे हैं, वो वस्तु कैसी है, तो ये जो अनेक गुण है उसकी पर्याय है, वो वस्तु कैसी है बताने वाले सारे विशेष थे, यानी वस्तु के विशेषण थे वो, परंतु वस्तु पूरी हमें ख्याल में लेनी है, तो जो वस्तु है तो फिर उसके सामान्य अंश पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एकाग्र होते हैं, उसका ध्यान करते, उसका अर्थ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कहा सारे ही अन्य चीजों को भूलकर, अब यहाँ कोई अन्य पदार्थों की भी विकल्पन कुछ नहीं है, अपने में भी पर्यायों को गौण करके ये जो त्रिकालीय अंश है उस पर हम केंद्रित करें अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान, उसका विकल्प करते रहना ये उसका केंद्रित करना नहीं है, उसको जानो, हम क्या करते हैं उसके, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ये तो विकल्प हुआ, आम खाना है तो आम पीला है मीठा, ऐसा बड़बड़ाने से वो आम का रस चखे खबर पड़ेगी कि मुंह में डालने से, यानी हम क्या करते डायरेक्ट उसको जानते हैं तभी तो वो उसका पता चलता है। पहले तो विकल्पात्मक भूमिका होगी, मैं ऐसा त्रिकाली शुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प होंगे, परंतु अभी उसको डायरेक्ट जानो ना, वस्तु तो पूरी पड़ी है अंदर, ये ज्ञायक भाव तो पूरा पड़ा है कि जहाँ ये जानने का कार्य हो रहा है यह मैं ज्ञायक भाव हूँ, बस उसको जानो। हम क्या करना चाहते, उसके विकल्प खड़े करना चाहते, विकल्प आएंगे शुरू में और वो छूट भी जाएंगे, उसकी भी आकुलता करने की जरूरत नहीं है, परंतु पहले ये भी मालूम करना चाहिए कि विकल्प इतना ही ध्यान नहीं है, विकल्प के आगे भी जाकर उसका वस्तु को जब जानेगा डायरेक्ट, वो ज्ञान होगा, वो सम्यक दर्शन होगा, वो आत्मानुभूति होगी। तो ये नए उनसे बात चली ना, तो ये जो नए है जिसको शुद्ध नए कहते हैं, शुद्ध नए यानी उस अपेक्षा शुद्ध है ना, कैसा ये जो सामान्य अंश है वो त्रिकाल रहने वाला, उस रूप पूरी वस्तु को देखना है अपने। अब वहाँ मिथ्यात्व के पर्याय भी है, राग द्वेष के पर्याय भी है, अन्य अन्य पर्याय है, ये सारे पूरे पर्याय उनको ही गौण कर दिया, पूरा जो पर्याय उनका अनादि अनंत प्रवाह है हमने वस्तु में ही शामिल कर दिया। तो ये सारे का लक्ष्य छोड़कर एक सामान्य अंश को हमने जानना शुरू किया, तो ऐसा जानते ही वो पर्याय में शुद्धता यानी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मा का अनंत गुणों का जो रस है वहाँ पैदा हो जाता है, और वो है आत्मानुभूति। यानी वो कैसे किया था, शुद्धने के द्वारा हमने पूरे हमारी वस्तु को जाना, तो जाना शुद्धने के द्वारा और प्रकट हुआ प्रमाण ज्ञान, परंतु वो नए और प्रमाण के विकल्प नहीं रहे वहां, ये नए है क्या, ये प्रमाण है क्या, ऐसे विकल्प नहीं है। अभी हम कैसे जान रहे हैं, नए से जान रहे क्या, प्रमाण से जान रहे क्या, वो प्रमाण क्या है, नए क्या है, वो तो पहले अभी हम क्लास में बैठकर उसको सारे पढ़ा था, प्रमाण क्या होता है, नए क्या होता है, वो सारी बात अभी उस संबंधी कोई विकल्प नहीं है। आम खरीदने गए थे, लाए थे, घर में आकर सबको बताया मैंने ऐसा ऐसा किया, तब तो सारे विकल्प चले। अब मुंह में डाला चम्मच, आम रस पी लिया, तभी उसका अनुभव है, उस समय अन्य विकल्प नहीं है। वैसे जब आत्मा का अनुभव होता है तभी वहां लिखते है ना आचार्य, समय सार में आता है ना कि वो नए की लक्ष्मी चली जाती है या प्रमाण उदित नहीं होता वगैरह वगैरह, यानी उसके विकल्प अभी कुछ नहीं रहते, पर प्रमाण नहीं नष्ट हो जाता, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में ही तो आत्मा का अनुभव हो रहा है अभी, वो ज्ञान तो प्रमाण हो गया अभी, उसके पहले अभी जो करण लब्धि तक था तो वो शुद्ध नहीं के द्वारा आत्मा को जान रहा, और वो अंतिम समय में क्या हुआ फिर वो आत्मा का अनुभव आया, उसने पर्याय सहित वाला यानी प्रमाण ज्ञान में आत्मा को जान लिया। हाँ, सबको जाने वो प्रमाण ऐसा भी नहीं, अभी ख्याल में आया ना, प्रमाण ज्ञान यानी वस्तु के सारे ही अंशों को बिना मुख्य गौण किए हुए जानना, वो है प्रमाण ज्ञान। हाँ, ऑल ऑफ दिस एट अ टाइम। और जो श्रुत ज्ञान है उसी में ये नए वाले भेद पड़ते हैं, मुख्य गौण करने की जो स्टाइल है या उसकी जो उसकी पद्धति है, उसका जो शक्ति है मुख्य और गौण कर सके, ऐसी जो एबिलिटी है वो शुद्ध ज्ञान है, उसी को तो शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये तो हमारा कल का ही हम दोहरा रहे थे, देखो यह है ना निरपेक्ष नय तीसरी लाइन, मिथ्या एकांत है और सापेक्ष नय सम्यक एकांत है, तथा सापेक्ष नयों का समूह, अभी ख्याल में है ना सापेक्ष नयों का समूह यानी सभी वस्तु के सभी अंशों को जानने वाला ज्ञान, अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत है, और निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास उसको कहते हैं मिथ्या अनेकांत। यानी अन्य मति भी कहते कि हमारा ज्ञान प्रमाण है, परंतु ये प्रमाणाभास में आता है, वो आभास है, वो सच्चा नहीं है, कहा भी है अब ये शास्त्र में से यहाँ लाइन देते हैं, कार्तिकेय अनुपेक्षा में कहा है, दम्वत्वनेयन्तम् एयन्तम् तम् पिहोदि सविपेक्तम् सयनानेन नयेह्य निरवेक्तम् दीसदेनेव। जो वस्तु अनेकांत रूप है वही, यानी जो वस्तु जिस वस्तु में अनेक अंश है वही वस्तु सापेक्ष दृष्टि से एकांत रूप भी है। जो वस्तु नित्यानित्यात्मक है वह सापेक्ष दृष्टि से यानी किसी अपेक्षा से एकांत रूप भी है, यानी नित्य भी नित्य ही है। एक यानी अपेक्षा बता दी ना, जो वस्तु नित्यानित्यात्मक है वही वस्तु गुणों की अपेक्षा नित्य ही है, वो एकांत हुआ, ही लगा दिया ना हमने उसको, परंतु अपेक्षा बताइए, अपेक्षा बताकर ही लगाया तो वो नहीं हुआ, वो सम्यक हुआ। पहले क्या किया, जो वस्तु भेदा भेदात्मक है, अभेद भी है भेद भी है, पूरा द्रव्य है तो अभेद है, और गुण और पर्याय की अपेक्षा उसी को देखे तो भेद भी है। तो जो वस्तु भेदा भेदात्मक है, यानी वस्तु तो भेदा भेदात्मक ही होती है, वही वस्तु पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो भेद रूप ही है, वो सापेक्ष हुआ, और वो वस्तु एकांत रूप हमें दिख रही। वस्तु को हम पर्यायों की ही अपेक्षा देखेंगे तो हर समय नई 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 वस्तु दिख रही, परंतु नई नई वस्तु किस अपेक्षा से, वो अपेक्षा मत भूलना, पर्याय अपेक्षा। बौद्ध कहते वो बिना निरपेक्ष में है, वो सर्वथा क्षणिक कहते, वो कहेंगे क्या वस्तु क्षणिक है तो हम अपेक्षा लगा देंगे, पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक है, पूरी वस्तु को क्षणिक क्या, क्यों, पर्याय की अपेक्षा लगाकर। वस्तु और पर्याय, वस्तु और उसकी पर्याय, वो तो भिन्न दो चीजें तो ही नहीं है, वस्तु की ही जो अवस्था है उसी को तो पर्याय कहा, तो वस्तु इस अवस्था में है, फिर दूसरी अवस्था में, फिर तीसरी अवस्था में, फिर चौथी अवस्था में, मोटी तौर पर देखेंगे तो मनुष्य है जी, वही देव वाला जीव हुआ, वही तिरंत में गया, तो जीव 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 वही रहा ना, और उस पर्याय की अपेक्षा देखो तो अनित्य है वो, पर्याय की अपेक्षा द्रव्य ही अनित्य, तो अपेक्षा लगाया तो उसको एकांत कहते। क्या, जो वस्तु अनेकांत रूप है वही, यानी वही वस्तु सापेक्ष दृष्टि से या नए से एकांत रूप भी है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है और नयों की अपेक्षा एकांत रूप है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में तो सारे ही नए गर्भित है, श्रुत ज्ञानी ने प्रमाण ज्ञान, तो प्रमाण ज्ञान से कैसी है वस्तु, अनेकांत रूप है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में उसके अनंत धर्म उसको दिख रहे हैं, तो वो श्रुत ज्ञान प्रमाण जो है उसकी अपेक्षा तो वस्तु अनेकांत रूप है। अब नए जो वस्तु को देखेगा तो उसका नए का काम ही एक एंगल से पूरी वस्तु को देखना, तो नए को वस्तु कैसी दिखती है, एकांत रूप दिखती है। सीता का उदाहरण हम रोज लेते ना, वो माँ भी है, पुत्री भी है, बहन भी है, परंतु लव की अपेक्षा उसको एकांत है, क्या माँ ही दिखती है, अन्य कुछ नहीं दिखती, वस्तु तो पूरी की पूरी है। ये बंद यहाँ हुआ नहीं ना, ये इंद्रजन का वो पंचाध्याय में आता है ना, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। महासत्ता है ने क्या, यदि द्रव्य की अपेक्षा देखो तो सारे द्रव्य ही है, अभी वो कौन सा द्रव्य है इस अपेक्षा देखो, तो एक जीव द्रव्य, कुद्रव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, वो उसको अवान्तर सत्ता। अभी हम मुमुक्षु की अपेक्षा, सारे मुमुक्षु है, आप अकेली हो तो आप मुमुक्षु है, और आपका नाम क्या है तो आप दीपाली हो, तो आप दीपाली भी हो और आप मुमुक्षु भी हो, तो आप दीपाली नाम की एक मुमुक्षु हो, ऐसा वो हुआ प्रमाण, वो हुआ यानी एक सत्ता है आपकी, दो सत्ताएं तो है ही नहीं है, उस एक सत्ता को मुमुक्षु रूप से देखना, ये अन्य की सत्ता नहीं, उसमें महासत्ता ने सबकी मिलकर एक सत्ता नहीं होती, अपनी अपनी सत्ता, उसको कॉमन में आप उसको डिस्क्राइब करना, उसको कहते हैं महासत्ता, और उसी को विशेष रूप से कॉमन नहीं, उसका अपना कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है ना, यानी पर्टिकुलर उसकी विशेषता है, तो उसको आपको अभी दीपाली कहना, ये हो गई अवान्तर सत्ता, और आपको मुमुक्षु कहना, ये हो गई महासत्ता। सत्ता तो एक ही है, उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। ये यहाँ का विषय नहीं है, वो पंचाध्याय में शाम को चल रहा है इसलिए यहाँ निकला। देखो हाँ, पूरी वस्तु एकांत है, ऐसा नहीं कि मैं केवल उसका एक अंश को ग्रहण करता है, उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वस्तु में दो अंश है पड़े हुए और अकेले एक अंश को पकड़ा और दूसरा अंश उसने देखा ही नहीं, वस्तु में अलग किया, ऐसा नहीं है। पूरी वस्तु को उस एक अंश रूप से देखना। ये नयों के बाबत में बहुत घोटाले होते हैं, वस्तु के एक अंश को इन्हें ऐसा लगता है कि वस्तु ही हमने खंडित कर दी, उसका ज्ञान अधूरा है। क्यों? वस्तु के एक ही अंश को जानता है, ऐसा नहीं है। पूरी वस्तु एक अंश रूप से देखता है, ये महत्व का है। उसमें पूरी वस्तु ही उस नित्य वाले अंश के द्वारा देखेगा, तो पूरी वस्तु उसको नीचे नीचे दिख रहा है। जीव तो सदा है, जो हम कहते ना त्रिकाल है, वो किस अपेक्षा से? वो जो नित्य वाला अंश है तो उस अपेक्षा से हमें वस्तु हमेशा है ही दिखती है। अब अनित्य वाला अंश को मुख्य करो, वस्तु क्षणिक 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 दिखती है, पूरी वस्तु ही क्षणिक दिख रही है। उसने वो बौद्ध ने क्यों उसको क्षणिक माना, परंतु वो अपेक्षा नहीं लगाई ना, वस्तु को ही नष्ट हुआ मान लिया। परंतु वस्तु तो हमेशा विद्यमान है, नित्य और अनित्य अंश सदैव एक साथ है, तो प्रमाण दृष्टि से वो नित्यानित्यात्मक है वस्तु। अब हमें अनित्य अंश देखने से बहुत आकुलता होती है, तो क्या करें? अनित्य को गौण करो, नित्य को देखो, आकुलता मिट जाएगी। वही तो है ना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का तरीका। पहले तो जानना दोनों को है, नित्यांश अनित्यांश, ये जो भेद अंश अभेद अंश, ये सार है, सामान्य अंश विशेष अंश, सारों को तो जान लिया हमने शास्त्र के आधार से। अभी अपना अनुभव करना है तो क्या करे? तो ये जो नित्य वाला अंश है उस रूप अपने को देखो, तो आकुलता मिट जाएगी और आनंद की उत्पत्ति हो जाएगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है इन वस्तु, गलत ही करो नहीं है। नीचे से कुछ आ रहा है, नीचे बाहर का आवाज, अंदर का नहीं। देखो शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा अनेकांत रूप है और नयों की अपेक्षा एकांत रूप है, यानी नए के द्वारा वस्तु को जानते हैं वो सम्यक एकांत, क्योंकि नए है लगाए ना हमने, तो वो एकांत रूप है। बिना अपेक्षा के वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता। कोई कहेंगे हम अपेक्षा लगाएंगे नहीं, हमको तो ये वस्तु दिख ही रही है, तो उसका वो सच्चा ज्ञान नहीं है। तो बिना अपेक्षा के वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता है, ये तो हुआ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या बताया था उसका अर्थ हुआ, अनेकांत में अनेकांत की सिद्धि करते हुए, यानी अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है। पहले हमने देखा था अनेकांत भी सर्वथा एकांत वाला, वो सर्वथा अनेकांत नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है। कल बात पूछी ना, क्या आपका अनेकांत सर्वथा अनेकांत है? नहीं, जैन कहते हमारा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, यानी उसमें ये सम्यक एकांत भी उसमें गर्भित है। अनेकांत में अनेकांत की सिद्धि करते हुए आचार्य अंकलंक देव लिखते हैं, ये अकलंक देव उसमें राजवार्तिक में लिखते हैं, यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाए और एकांत का सर्वथा लोप किया जाए, ख्याल में है ना कि जो हम सर्वथा सम्यक एकांत किसको कहते हैं, वो नए वाला, कि अगर उसको हम माने ही नहीं और अनेकांत को अकेला अनेकांत ही मानेंगे, तो सम्यक एकांत के अभाव में सम्यक एकांत का अभाव हो जाएगा, यानी वस्तु को एक एक अंश को जानने वाला नए वो अभाव हुआ। हमने प्रमाण किसको कहा? सम्यक नयों के पूरे समूह को प्रमाण कहा, यानी सम्यक नये सम्यक नये सम्यक नये सम्यक नये, ऐसे सारे सम्यक नयों के समूह को हमने प्रमाण कहा। तो आगे क्या कहते कि सम्यक एकांत का अगर अभाव हो जाएगा तो शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरह, अभी हमारे पास वृक्ष तो है परंतु उसमें न शाखा है, न रल्ली है, न पत्ते हैं, न फूल है, न कुछ है, तो क्या है, तो शाखा भी यानी उसके सारे वृक्ष के जो अंग है उसके बिना वृक्ष कहाँ रहा। वैसे सम्यक एकांत ही अगर नहीं होगे यानी नए ही नहीं होगे तो श्रुत ज्ञान भी कैसा होगा प्रमाण। तो कहते हैं कि शाखादि के अभाव में वृक्ष के अभाव की तरफ यानी शाखादि भी में सब लेना शाखा फल पत्ते सारे सारे उसके अभाव में वृक्ष का भी अभाव है। उसी तरह तत्समुदाय रूप अनेकांत भी का भी अभाव हो जाएगा यानी सम्यक एकांत का अगर अभाव होगा तो सम्यक एकांत के समूह से तो अनेकांत हुआ है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है उसका नित्य अंश और अनित्य अंश नित्य को जानने वाला नहीं और अनित्य वाला जानने वाला नहीं दोनों को मिलकर तो प्रमाण हुआ था। अब ये दोनों ही अंश न रहे तो उस प्रमाण ज्ञान भी कहाँ रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सम्यक एकांत का अगर अभाव हो जाएगा तो उसके समुदाय का जो अनेकांत होता था उसके समुदाय से जो अनेकांत होता था उसका भी अभाव होगा। अतः यदि एकांत ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत शेष का भी लोप होने से सर्व लोप का प्रसंग प्राप्त होगा। कोई कहेगा एकांत ही मानो वस्तु को सर्वथा नित्य ही मानो दूसरा अंश मानो ही नहीं तो क्या कहते हैं, परंतु वो अनित्य अंश उसका अविनाभावी है। हम कहते हैं ना उद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है उनमें आपस में कैसा संबंध है, अविनाभावी। जहाँ एक स्पर्श गुण है वहाँ पर इतर सारे है और है। तो हमें तो अभी वस्तु का वर्ण दिख रहा है तो कोई कहे इसके वर्ण को ही मानो अन्य इसको लोभ करने ने उसका अभाव करना। हमने स्पर्श का अभाव माना गंध का अभाव माना रस का अभाव माना तो कहते इन तीनों का अभाव माना तो आपका वर्ण का भी अभाव हो जाएगा। देखो ये सारा ना ये बौद्धिक कसरत है गौण नहीं ये उस नाश मानते हैं। देखो उसका कहना क्या है यहाँ जो पूछ रहे हैं ना आप एकांत ही मानो अनेकांत की क्यों इतनी झंझट कर रहे हो। वस्तु के एक अंश को मानो नित्य अंश को मानो भले या अनित्य को मानो अन्य को लोप कर दो लोप यानी उसका अभाव ही मानो। तो यहाँ वर्ण को माना हमने और इस वस्तु में स्पर्श रस गंध नहीं है ऐसा माना तो हमने स्पर्श को उड़ा दिया रस को उड़ा दिया गंध को उड़ा दिया तो उसके अविनाभावी वाला वर्ण भी उड़ जाएगा ये भी नहीं रहेगा जिसको हम मान रहे थे। तो क्या कहते यहाँ यदि एकांत ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का लोप होने पर अकेला नित्य को ही हम स्वीकार किए तो अनित्य का लोप ही हो जाएगा। और वो अनित्य धर्म कैसा है अविनाभावी है नित्य धर्म के साथ अनित्य भी वस्तु का धर्म है और दोनों अविनाभावी रूप से एकत्र रहते हैं तो उसका भी लोप होने पर प्रकृत शेष का भी यानी बचा हुआ जो अपना है ना प्रकृति यानी वर्तमान जिसको हम मान रहे विद्यमान विद्यमान शेष यानी बचा हुआ जो हम जो इसको मान रहे हैं हम नित्य ही मानना चाहते हैं वस्तु को और अनित्य का लोप कर दिया तो नित्य और अनित्य तो अविनाभावी है। तो जो एक का हमने बाकी का सबका नाश कर दिया माना हमने अनित्य है ही नहीं है अनित्य धर्म ही नहीं है माना अकेला नित्य माना और दोनों अविनाभावी है अनित्य को उड़ा दिया तो अभी बचा हुआ नित्य वो भी उड़ जाएगा उसके साथ तो प्रकृत शेष का भी लोप होने से सर्व लोप का प्रसंग प्राप्त होगा यानी वस्तु ही नष्ट हो जाएगी। प्रकृति यानी वर्तमान विद्यमान जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको प्रकृत कहते हैं। ये बीच में बहुत ऐसा जरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मगर कोई बात नहीं हमारा एक और सब्जेक्ट हुआ ना क्रमबद्ध पर्याय के साथ अनेकांत की भी चर्चा हो गई ऐसा नहीं समझना ये विषयांतर बहुत हो रहा है क्योंकि ये तो हाँ ये तो लॉजिकल है सारा और इसमें सारी बुद्धि की कसरत होती है प्रश्न भी ऐसे पूछते हैं और उसके उत्तर भी हम बराबर ख्याल में ले लेंगे तो ऐसा लगता है कि गजब के, क्योंकि वो सीखने में तो ऐसे लगता है अरे वो भी एकांत है और ये भी एकांत है, उसमें क्या फर्क, वो सम्यक कहते हो ये मिथ्या कहते हो, तो उसने अपेक्षा लगाई वो सम्यक हुआ, बिना अपेक्षा निरपेक्ष न होते वो मिथ्या होते, यानी इतना तो ख्याल में है ना कि जो नए सम्यक नए है वो सम्यक एकांत है और सम्यक एकांतों के समूह को ये अनेकांत हुआ, वो सम्यक अनेकांत हुआ। अब जो मिथ्या नए है, नया भास जो है, उनके समूह कितने भी इकट्ठे करो तो वो प्रमाणाभास हो जाएगा, वो अनेकांत तो सच्चा नहीं होगा। सम्यक एकांत नए है और सम्यक अनेकांत प्रमाण, ये यहाँ पर ही राजवार्तिक में ही ये वाक्य आया है। अब ये सारा क्यों समझा रहे थे, वो सम्यक नियतिवाद और मिथ्या नियतिवाद की, देखो इस दृष्टि से विचार करने पर, यानी अभी जो हमने एकांत अनेकांत का स्वरूप जाना, अभी उसकी दृष्टि से विचार करने पर क्रमबद्ध पर्याय सम्यक नियतिवाद अर्थात सम्यक एकांत है जो कि सम्यक अनेकांत की विरोधी नहीं अपितु पूरक है। अभी सम्यक अनेकांत क्या है क्रमबद्ध पर्याय में, कि पांचों ही समवायों के द्वारा वहाँ कार्य हो रहा है। अभी ये पांचों को, अन्य चार को गौण करके हमने नियति को मुख्य किया, मुख्य किया है और अन्य को गौण किया है, उड़ा नहीं दिया, अपेक्षा से लिया उसको, तो अपेक्षा सहित हमने कहा कि ये नियति से हो रहा है, अपेक्षा रखी वहाँ, तब ये हुआ सम्यक नियतिवाद। तो सम्यक नियतिवाद यानी सम्यक एकांत है और पांचों को एक साथ आप मुख्य, यानी पांचों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दे दो तो हो गया अनेकांत। अभी हम कहेंगे अकेले पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्धि होती है क्योंकि जीव के हाथ में वही है, तो वहाँ भी हमने अन्य की अपेक्षा सहित सापेक्ष से लिया कि अन्य चार समवायों को रख कर, यानी वहाँ निमित्त को भी माना, वहाँ वो काल लब्धि पुरुषार्थ ये होनहार वगैरह स्वभाव सबको रख कर हमने मुख्यता किसको की, पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ को मुख्य किया, अन्य को गौण किया, यानी पांचों ही समवायों को मानकर उसमें एक की मुख्यता की, तो हो गया सम्यक एकांत। और पांचों को इक्वल मानेंगे, इक्वल उसका कथन करेंगे, तो हो गया अनेकांत, सम्यक अनेकांत। तो ये जो हम यहाँ जो नियति बात कर